ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है वक्त संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख बिंदुओं पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और डॉक्टर कुमार राकेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव।
जैसा कि आप सभी जन जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अब पास हो गया है। पिछले हफ्ते संसद में मैराथन बहस के बाद दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में ये पास हुआ। उसके बाद जैसे कि इसकी यात्रा होती है किसी भी बिल की एक्ट बनने में, तो इसे प्रेसिडेंट का एसेंट प्राप्त हुआ। साथ के साथ कल भारत सरकार ने इसको अप्रैल 8 को इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और अब हम देख रहे हैं कि जैसे कि दोनों ही दल, दोनों ही ऑपोजिशन और पार्टी इन पावर, जो कि भारत सरकार ने इसको स्टीयर किया बिल को, तो तरह तरह के इसके अलग अलग विषयों पर बात हो रही हैं कि किस तरह से ये बिल, सरकार का मानना है कि ये मुस्लिम एम्पावरमेंट, उस कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में महिलाएं जो मुस्लिम समाज से आती हैं, पिछड़े तबके के मुस्लिम, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, जो वक्फ का जो पूरा सेटअप है उसके ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मत नहीं है और ये साथ ही साथ मुस्लिम राइट्स को ट्रैम्पल करने के लिए या उनको इफेक्ट करने के लिए लिया गया एक डिसीजन है। मैं सबसे पहले राकेश जी आपके पास आऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अब ये एक्ट बन चुका है, साथ ही साथ इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे भी सवाल हैं। तो मैं सबसे पहले, हम इसके पहले भी बात कर रहे थे, तो ये जो कुछ ओपोजिशन पार्टीज हैं और कुछ इंडिविजुअल लीडर्स हैं वो कोर्ट में जा चुके हैं इसके अमेंडमेंट के, इस नए एक्ट के खिलाफ। और साथ ही साथ भारत सरकार ने भी एक कैवियट दाखिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी डिसीजन बिना हमें सुने ना लिया जाए, बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट बिल है, ऐसा प्रावधान है भारत सरकार के पास। तो ये कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को कि जिस एक्ट को पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, अब अपील के पहले भी ऐसा हुआ है, आर्टिकल 370 के भी हुआ है, तो इस पूरे डेवलपमेंट को, क्योंकि ये सबसे नई चीज है अब, तो कैसे आप देख रहे हैं?
आपने सही कहा नीलाभ जी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट, जो उच्चतम न्यायालय है हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके लिए करीब विभिन्न दलों के 26 नेताओं ने अपील की है इसको निरस्त किया जाए। मुझे लगता है कि जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय संसदीय पद्धति है, भारतीय जो संविधान है, उसके तहत यदि जो भी ये लोग कर रहे हैं सिर्फ राजनीति करने के लिए, ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने लोकतंत्र के अधिकार के तहत उन्हीं संविधान की धाराओं को, जिसके तहत ये बिल बनाया गया है, ये अमेंडमेंट कोई नया एक्ट जो है अधिनियम नहीं बनाया गया है, ये अमेंड किया गया है। यदि आप देखें तो इसमें दो था, इसमें मुसलमान वक्फ एक्ट एंड वक्फ अमेंडमेंट 1923 को और 1995 को, दोनों को मिलाकर के एक नया बना गया, उम्मीद नाम दिया गया है इसका, यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसे उम्मीद कहा गया। वास्तव में एक उम्मीद है, इसमें संभावनाएं हैं, जो एक दादागिरी थी कुछ ऐसे संगठनों की, उसी में करीब बताते हैं कि 40,000 के आसपास केस पेंडिंग है, जिसमें 10,000 ज्यादा केस मुसलमानों के थे जिनकी संपत्तियों को हड़प लिया गया था जबरदस्ती। वक्फ का मतलब है दान की बात है, स्वेच्छा से किया गया दान, और उसका उपयोग क्या होगा, मतलब अब कोई ऐसी कॉलेज नहीं चल रहा है, संस्थान नहीं चल रहा है, कोई दवाखाना नहीं चल रहा है, पूरा सरकार ने जो ये व्यवस्था की है उन सभी मुसलमानों में एक खुशी की लहर है। पहली बार देखा गया कि भारत सरकार के इस निर्णय से कई जगह पटाखे चले और लोगों ने खुशियां मनाई, जो पसमंदा समाज है, जो युवा है, जो महिलाएं हैं, उनको अधिकार देने की बात है। एक जो सुप्रीम कोर्ट में जो बातें गई हैं, मुझे लगता है इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, मनन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी, संसद को भी। जबकि ये एक्ट, जैसा आपने बताया कि माननीय राष्ट्रपति ने उनको अंतिम मुहर लगा दी है, विधेयक बन गया, संसद ने पास किया ट्रांसपेरेंट तरीके से, 12-12 घंटे बहस चली, सभी दल के लोगों ने हिस्सा लिया। मेरा मानना है, ये मेरे निजी विचार हैं, क्या इस भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय संविधान बड़ा है, एक देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ना सुप्रीम कोर्ट, ना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। मेरा मानना है कि देश के वो सभी जो भी राजनीतिक दल हैं अपने निजी स्वार्थों के लिए देश को जिस तरह से स्टेक पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बंद करना चाहिए और इस पर चर्चा होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, संसद बड़ा है, या भारत के राष्ट्रपति बड़े हैं। ये मेरा मानना है।
उपासना साहब, मैं आपको इस चर्चा में अब लाना चाहूंगा कि जैसा कि सरकार ने कहा कि ये जो बिल है और ये जो एक्ट अब बन गया है, तो इसमें वक्स ट्राइब्यूनल्स को स्ट्रेंथन करने की या उनको मजबूत करने की बात है और ट्रांसपेरेंसी की बात है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है, जो वक्फ का जो पूरा सिस्टम है, उसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, और ये मैसेजिंग को वो लेके जा रहे हैं। और मैं इस कंटेक्स्ट में आपसे पूछ रहा हूं कि ऑपोजिशन का कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? क्या इनके सैलियंट पॉइंट्स हैं? क्या एक अहम मुद्दे हैं इस बिल में, इस एक्ट में, जिनको आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं?
देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये कहना, तो ये तर्क तो राजनीतिक तर्क है, क्योंकि जो 2013 में संशोधन किए गए थे वक्फ बिल में, वो बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन थे। संविधान से ऊपर के अधिकार दिए गए थे, जिसमें ट्रिब्यूनल के बाद अपील करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, जिसमें अब जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसको अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है, उस न्याय संहिता में जमीन पर अगर वक्फ बोर्ड दावा करे तो जमीन मेरी है ये प्रूव करने का जिम्मा जमीन के मालिक को दे दिया गया, जबकि कानून ये कहता है जो भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता कहती है कि जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो आरोप प्रूव करने का अधिकार आपको। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव 2013 में चुनाव 2014 के चुनाव की लोकसभा चुनाव की अधिसूचना और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी होने के कुछ ही दिन पहले कैबिनेट ने क्लियर किया, संसद ने पास कर दिया और असीमित संविधान से ऊपर अधिकार उसको दे दिए गए। और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि अगर इतने कड़े प्रावधान नहीं बनाए गए थे 1995 के वक्फ बोर्ड बिल में, उसको संविधान से अदालती जांच की उससे ऊपर न कर दिया गया होता तो हमको यह संशोधन बिल लाना नहीं। ये बिल्कुल सही बात है, जिन लोगों ने भी चैलेंज किया है कोर्ट अपने यहाँ की प्रक्रिया है, और लेकिन इसमें कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात लगती नहीं है। जो 95 में था उनमें से अधिकतर प्रावधान इसमें रखे गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो दो गैर मुस्लिम सदस्य तो पहले 1995 के कानून में भी थे, दो गैर मुस्लिम सदस्य राज्यों के बोर्ड में भी थे, केंद्र के बोर्ड में भी थे, वो रखे गए हैं। सरकार ने सिर्फ इतना किया कि शिया के लिए, सुन्नी के लिए, बोहरात के लिए, सबके लिए अलग अलग और प्रतिनिधि उसमें नामित कर दिए। जो अधिकार ट्राइब्यूनल के बाद अपील का अधिकार था वो इसमें जोड़ दिया। जो पिछले 2013 के ड्रेकोनियन लॉ में 40/40 जोड़ी गई थी, जिसमें मनमाने ढंग से वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना अधिकार जता सकता था, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कुंभ मेले की जमीन पर, संसद पर और वक्फ बोर्ड ने अधिकार जताया। 2013 में जब ये ड्रेकोनियन लॉ में बनाया गया तो दिल्ली की 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी गई, नोटिफिकेशन हो गया। अगर हाईकोर्ट ने नहीं रोका होता, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बिल्कुल ठीक बात कही और उसको किसी कांग्रेस के सदस्य गौरव गोगोई ने चैलेंज किया, लेकिन कोई सबूत वो नहीं दे पाए क्योंकि वो तथ्य है, हाईकोर्ट में केस चल रहा है। अगर हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया होता तो संसद भवन भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होता, ऐसे कैसे हो सकता है? आप मतलब ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और फिर देखिए, अगर आप मुस्लिम समाज की जो आर्थिक सर्वेक्षण अपने देश में होता है, मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि मुस्लिम समुदाय में दो चीजों की सबसे पसमंदा समाज, सबसे बड़ा समाज है, 60-70% समाज है जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, जिनके बच्चों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती। 60% समाज में के पास अगर जमीन नहीं है तो वक्फ बोर्ड तीसरा बड़ा और भूमाफिया कैसे बन गया सेना और रेलवे के बाद, इतनी जमीन वक्फ को दान कर दी गई। इतनी जमीन तो 20% मुसलमानों के पास देश में है ही नहीं, तो ये जमीन कहाँ से आई? ये गलत थलत दावे करके आई। और फिर इसका मैनेजमेंट, जिस पर सरकार, जिसने जिसके लिए सरकार ने ये बिल लाया है, जो मनमाने तरीके से किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला 12,000 रेंट पे एक वापसी प्रॉपर्टी दे दी गई, जिसमें 5-स्टार होटल चल रहा है, करोड़ों रुपया वो कमा रहा है। ये इस वक्त संपत्ति का उपयोग है, वक्फ संपत्ति से गरीब, पसमंदा, पिछड़े हुए, अशिक्षित, बीमार मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का, बेघर मुसलमानों का, बेरोजगार मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ। पूरी देश की वक्फ संपत्ति है, उसको 200 के करीब लोग कंट्रोल करते हैं, जिनके नीचे मुतवल्ली जो मैनेजर हैं बेसिकली और मजहबी नेता हैं, वो उस संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए और वक्फ बोर्डों की मनमानी को खत्म करने के लिए, और सरकार ने जेपीसी, पहली जेपीसी है ये संसद के इतिहास में जिसने 6 महीने में 5 महीने में और लगातार बैठकें करके अपनी रिपोर्ट फाइनल की। महिला विधेयक पर भी एक जेपीसी यूपीए के गवर्नमेंट में बनी थी, जिसका कोई हल नहीं निकला, जिसका कोई सुझाव नहीं आया, संसद में पारित नहीं हो सका।
बिल्कुल।
तो मैं मानता हूं कि सरकार ने अच्छी नीयत से ये किया है, और जैसा किरण रिजिजू ने कहा कि ज्यादातर लोगों ने इस बिल को पढ़ा नहीं है और इसलिए वो विरोध में है। जब इसको वो पढ़ेंगे तो वो जानेंगे कि ये तो मुसलमानों के भले के लिए, और मुसलमानों के जो वक्फ के धार्मिक मजहबी अधिकार है उसमें सरकार कहीं दखल नहीं दे रही।
बिल्कुल,
सरकार के जो भी नामित प्रतिनिधि हैं वो प्रबंधन की देखरेख करेंगे और
हाँ।
ये प्रबंधन देश के कानूनों के अंतर्गत होगा।
बिल्कुल, इसी पे कल पहली बार प्रधानमंत्री एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर थे और उन्होंने वहां पर भी अपने पहले कमेंट्स दिए, मैं उन्हें सुन रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि ये सोशल जस्टिस के लिए वक्फ एक्ट जो आया है ये सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए और ये तुष्टिकरण की जो बातें हैं, अपीजमेंट की जो बात है उसके खिलाफ है ये और इसीलिए सरकार इसको लेके आई है। राकेश जी, गृहमंत्री अमित शाह को हम सभी ने डिबेट्स को बहुत, जो भी इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सुना हमने, दोनों ही राज्यसभा लोकसभा मैराथन चली तो उसमें अमित शाह जी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जब वो सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है इस सबके पीछे, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है जिसके कारण ये 2013 की जो अभी उपासना साहब जिसका मेंशन कर रहे थे, तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या है, क्या इसका इंडिकेशन था उनकी तरफ से, सरकार के मंत्रियों की तरफ से, और इवन ओपोजिशन जब वो एक्यूज करती है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट है।
वोट बैंक पॉलिटिक्स है ये, पहले इसमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इन्होंने पूरा पारदर्शी बनाया है, जो एक मुस्लिम समाज में भी मुस्लिम जो लोग हैं उपेक्षित थे, जो अभी उपासना जी कह रहे थे कि 60-70% पसमंदा समाज है और युवा हैं, मुस्लिम हैं, जो शोषित महिलाएं भारत के इतिहास में पहली बार पिछले 10 वर्षों में तलाक को लेके जो कानून बनाए गए उस पर भी लोगों ने बावला मचाया और महिलाएं कितनी सुकून महसूस कर रही हैं, अपने को लग रहा है कि वास्तव में भारत के संविधान के तहत किया गया। उसके अलावा जो वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात है, उस वोट बैंक पॉलिटिक्स में लाभ जी था, बहुत लोगों का लगता है उनकी जागीर चली जाएगी, जो सो कॉल्ड मैं बोलूंगा, यदि कानून की बात करें तो यह पूरी संविधान के तहत है, संविधान की धाराओं के तहत है। मैं 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें मैं प्रकाश डालना चाहूंगा जो संशोधन किए गए हैं। तो मुद्दा यह है इसमें जो किया गया है पॉइंट संशोधित में, धारा 3G है, इसमें वक्फ की परिभाषा स्पष्ट किया गया है कि तभी वक्फ मानी जाएगी जब किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धार्मिक अपरोपकारी कार्य हेतु अस्थायी रूप समर्थ किया गया हो, 5 ईयर्स का प्रैक्टिसर की बात की गई, उसको लोग इम्प्लीकेट कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि कैसे कौन तय करेगा। धारा 4 में है वक्फ परिषद की स्थापना की गई है जिसमें जो गैर मुस्लिम सदस्यों को अधिकार नहीं, वो सिर्फ एक पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगे कि तो लोग उन्हीं के लोग काम करेंगे। धारा 5A है, तकनीकी और डिजिटल प्रबंधन की बात है, वो रिकॉर्ड कर दिया गया है। धारा 6(1A) है, अब किसी वक्त संपत्ति के दावे पे विवाद होने पे स्वामित्व प्रमाण की जरूरत होगी, बिना कागज नहीं दिखाएंगे, वो पुरानी वाली बात थी, अब वो कागज दिखाना पड़ेगा। धारा 40A प्रावधान करता है कि कोई संपत्ति पहले से किसी कानून के अंतर्गत आरक्षित है, जैसे जमीन अधिग्रहण कानून, उसको वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु गांव को भाई इस्लाम का 1400 साल भी पूरे नहीं हुए, 1500 साल पुराना गांव है, वो वक्फ संपत्ति हो गई थी। ये क्या है, ये मैंने कई रेलवे स्टेशन को इन लोगों ने वहां मस्जिद बना करके, प्रयागराज के पास भी कही वहां उन्होंने कहा कि हमारी वक्फ संपत्ति है। धारा 51 वक्फ संपत्ति के लीज पट्टा से संबंधित जो नियम है उसको पारदर्शी किया गया है। 52A वक्फ अलाल और औलाद में महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान को जोड़ा गया। उसके अलावा जो भी वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों समावेश किया गया है, लोग कहते हैं इन्होंने मंदिर में होगा क्या, फिर बोल देते हैं क्या गुरुद्वारा में होगा क्या, अरे भाई आप पहले कुरान को मानोगे, इस्लाम को मानोगे या संविधान, किसी को तो मानोगे, आप किसी को नहीं मानोगे, मतलब देश संविधान चलता है, एक कानून है, एक अनुशासन है। ये मैं कुछ हाईलाइट्स मैंने बताया जिसको लेकर लोग कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन्होंने उसको सरकार ने, मोदी सरकार ने पारदर्शी बनाया है, उस पारदर्शिता में जिम्मेवारी तय की गई है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा जो भी वहां जाके क्लेम कर सकते हैं। 10,000 से ज्यादा जो मामले हैं वो मुस्लिम समाज के मुसलमानों के, उनका क्या, सिया सुन्नी ही थे पहले इसमें, अब पसमंदा को जोड़ा गया, आगा खानी को जोड़ा गया है। तो ये जो समाज को समावेशी जो बात कही गई, जो आपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की बात कही, तो ये बहुत बड़ा ये क्रांतिकारी कदम है,
बिल्कुल
देश के लिए, समाज के लिए, खासकर मुस्लिम समाज के लिए, ये जो तथाकथित कुछ लोग हैं।
हम देख रहे थे कि जिस तरह से आपने बताया कि इन सेक्शंस का, कुछ सेक्शंस को आपने साइट किया, श्रोताओं के बेनिफिट के लिए एक बार हम जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनका एक वक्तव्य है जो उस समय पिछले हफ्ते उन्होंने पार्लियामेंट में सदन में बोला था, हम उसको एक बार सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे लेके जाते हैं।
गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन फिजिकल मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है, वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने कमिटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है।
अगला सवाल मेरा उपासना साहब आपसे है कि अब क्योंकि एक्ट बन गया, कल नोटिफाई हो गया और कल भारत सरकार ने उसको इमीडिएट इफेक्ट 8 अप्रैल से वो लागू हो रहा है, तो मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनका वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम इसको अपने स्टेट में लागू नहीं करेंगे। जैसा कि मैं पढ़ रहा था, जैसा कि हमने समझा कि जो ये कमिटीज होंगी स्टेट लेवल पे वो तो स्टेट गवर्नमेंट को ही फॉर्म करना है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को देख सकती है कि जो भी डिसीशन स्टेट कमिटीज ले रही हैं वक्त के मामले में वो फेयर है नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ही परव्यू में रहेगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या ये सच है, किस तरह की बातें इस एक्ट में कही गई हैं?
देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है ये केंद्रीय कानून, ये समवर्ती समिति का कानून नहीं है कि इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का दखल हो, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार का कानून है और ये हर राज्य को मानना पड़ेगा, जैसा बनाया गया है वैसा ही मानना पड़ेगा। ठीक है, राज्य वक्फ बोर्डों में जो नियुक्तियां करनी है वो नियुक्तियां आपको अब नए कानून में, जो राज्य वक्फ बोर्ड है जिसमें पहले और दो निर्वाचित मुस्लिम सांसद विधायक बार काउंसिल सदस्य जिसमें दो महिलाएं रहती थी, अब उसको बदल के राज्य सरकार सदस्य नामित कर सकती है, दो गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्यतः उसको रखने होंगे, शिया सुन्नी पिछड़ा मुस्लिम बोहरा और आगा खानी समुदाय से एक एक सदस्य रखना होगा और दो महिला सदस्य अनिवार्य रूप से रखने होंगे। ये केंद्रीय कानून है, चाहे ममता बनर्जी कहे चाहे और कोई कहे, ये मानना पड़ेगा। अगर ये वो नहीं मानेंगे तो सरकार उन पर कंटेंप्ट का कोर्ट केस चला सकती है, कोर्ट में जा सकती है, सरकार दूसरे तरीके से भी राज्य सरकार को केंद्रीय कानून मानने के लिए मजबूर कर सकती है, संविधान में उसकी व्यवस्था है, ये संघीय ढांचा है, यह कोई हर स्टेट स्वतंत्र राज्य नहीं है, ये केंद्र और संघ और ये ऐसा संघीय ढांचा है जो एक दूसरे पर आश्रित है, इसीलिए संविधान ने समवर्ती सूची दी है जिसमें अनेक विषय राज्य भी हैंडल करता है केंद्र भी हैंडल करता है, लेकिन ये ऐसा कानून है जो केंद्र का कानून है, संसद से पारित हुआ है, ममता बनर्जी हो चाहे एम के स्टालिन हो चाहे और कोई हो उनको ये कानून मानना पड़ेगा, गृह मंत्री ने इसको स्पष्ट कर दिया है, इसको कोई चैलेंज आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, किया ही है लोगों ने, 27-28 दलों ने, कांग्रेस समेत तमाम लोगों ने चैलेंज किया, तो उन्होंने 3 तलाक को भी कानून सीएए को भी चैलेंज किया था, 370-35 से हटाने को भी चैलेंज किया था, संविधान सम्मत माना सुप्रीम कोर्ट ने। मेरा मानना है कि जितनी पारदर्शिता से और जितनी ईमानदारी से बिना मुस्लिम मजहब में बिना उनके रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किए ये कानून बनाया गया है, अच्छी नीयत से बनाया गया है और संविधान के अनुरूप बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको जो भी चैलेंजेस मिले हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट वही राय देगा जो सुप्रीम कोर्ट ने सीएए के 370 के या 3 तलाक के मामलों में दी थी। ये मानना पड़ेगा राज्यों को और इसको मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता।
राकेश जी, आप पॉलिटिकल मामलों में पैनी नजर रखते हैं, तो क्या इस मुद्दे को आने वाले कुछ चुनावों के नजरिए से भी देखा जाना है, क्या जो बिहार में चुनाव आ रहा है और अब वो बिहार के चुनाव से मैं लिंक कर रहा हूँ करंट गवर्नमेंट के जो दो मेन एलाइज हैं टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड जो कि बिहार में एलाई है एनडीए का, तो इन दोनों ने भी इनके बहुत सारे ऐसे स्पेकुलेशन थे, ओपोजिशन का भी ऐसा मानना था कि शायद ये सपोर्ट नहीं करेंगे सरकार का, उन्होंने भी सपोर्ट किया शायद एक आध कोई पॉइंट पे जरूर उनका अमेंडमेंट पे इशू था, तो इसको इस मुद्दे से जब हम वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करते हैं और उसके बाद अगला स्टेप है कि क्या कहां चुनाव है, क्या उससे इस पे क्या असर पड़ेगा, तो कैसे देखते हैं आप सरकार के जो दो एलाइज हैं उनका जो स्टेप था सपोर्ट करने का और साथ ही साथ आगामी चुनाव जो अलग अलग राज्यों में है इमीडिएटली तो बिहार में है।
आपने बिहार चुनाव का जिक्र किया, मैं दोनों सदनों की कार्यवाही को मैं लोकसभा में था राज्यसभा में सुना, जहां तक 2:30 बजे सुबह हो गई थी, ऐतिहासिक था, आप लोग भी रहे और लगा कि ये देश में क्रांतिकारी बदलाव है तो उसका साक्षी होना चाहिए, तो संजोग से दोनों अलग अलग दिन थे और सबको सुना और सबसे बड़ी बात है सैल्यूट टू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को। उसके अलावा जो भी भाषण हुए जो भी बातचीत की गई उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक आपने बात कही जेडीयू की और टीडीपी की तो उनसे पहले चर्चा की गई, उनके जो भी अमेंडमेंट्स थे उनको लिए गए, उन अमेंडमेंट का समावेश किया गया इस विधेयक में। चिराग पासवान को मैंने सुना संसद के अंदर भी और बाहर भी, उन्होंने कहा कि ये जो उपेक्षित समाज है, पसमंदा समाज, बिहार में पसमंदा समाज का एक बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। और आपको याद होगा पिछले दशक में, मतलब करीब आदिम बिहार की राजनीति को देखिए, मैं बिहार से आता हूँ, 1990 से लेकर 2005 एक भाग बांटे, और 2005 से 2025 तो 15 साल बनाम 25 साल कह लीजिए उसे, या आप इस तरह से उसको अब जोड़ सकते हैं। तो उस लिहाज से वहाँ जो पसमंदा समाज है वो खुश है। कुछ जो छोटे जो लीडर्स हैं जेडीयू के, कुछ लोगों ने रिजाइन किया है, उनके अपने अपने स्वार्थ हैं, लेकिन उससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बिहार चुनाव में इसका लाभ मिलेगा एक बड़ा तबका जो वास्तव में वोटर है, जैसे कहते हैं ना कि वोट की राजनीति के तहत जो वोटर्स है, एक जो उच्च वर्गीय मध्यम वर्गीय, वो वोट नहीं डालता, वो जो वोट डालने वाला वर्ग है वो उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसका बहुत लाभ मिलने वाला है अभी एनडीए को, बीजेपी को, जेडीयू को। टीडीपी ने भी अपनी जो भी मान्यताएं थी, आप देखिए आते ही चंद्रबाबू ने तिरुपति बालाजी में क्या किया, कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम। तो कहने का मतलब है कि उसका लाभ मिलेगा, और जो लोग बोल रहे हैं तथा कि राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। हमारा 65% जो है युवा वर्ग है और शिक्षित है, और जो हाथ में जो इंफॉर्मेशन का पावर है, जो इंटरनेट विदेशों में कई देशों की यात्रा की है, जहाँ की रुपया डॉलर में है, हमारे पैसों में आ गया है, जो इंटरनेट की इंफॉर्मेशन जो पावर है आपके हाथ में है, कोई भ्रमित नहीं कर सकता, कोई बरगला नहीं सकता, जो भी सच है सामने है। और ये सरकार जो है सच की राजनीति कर रही है, झूठ को नहीं श्रेय दे रही है। और हमारा तो देश की संस्कृति है जो विश्व में है कि भाई सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते है, तो सत्य की तो जय होनी होनी है, चाहे कुछ भी कर लें। कहते हैं कभी कभी परास्त भी नहीं, थोड़ा सा डाउन होता है, विजय तो होगा होगा, तो अल्टीमेटली वही है। और उसी के तहत आपने एक और अच्छी बात कही थी, तो उसी में जैसे कि दो चीजें हैं, जम्मू कश्मीर का जो वाकया है विधानसभा में, तो वो भी निंदनीय है। जब देश के संसद ने, दोनों सदनों ने पास कर दिया, तो वहां पे स्पीकर हो या सत्ताधारी दल को उनके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने बहुत गलत किया। अच्छा, मुर्शिदाबाद दंगे हो उसमें सरकार को भी, राज्य सरकार जो है पश्चिम बंगाल की, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। ये देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता, और देश के विकास के लिए सबको साथ होना चाहिए, चाहे पक्ष को हो या विपक्ष को।
हमने गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उनके बारे में हमने सुना कि किस तरह से, आपने कहा वो पूरे समय मैदान में डटे हुए थे, दोनों सदनों में थे, सुनते हैं कि उनके क्या वक्तव्य थे एक छोटे से बाइट के माध्यम से।
भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा, आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह, कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया, कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा, ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का, वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100-100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो घिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है।
उपासने साहब, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और जो मोदी गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस है और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, तो हमने अब आज हम वक्फ एक्ट की बात कर रहे हैं, पीछे देखें तो आर्टिकल 370 हो गया कश्मीर से हटाना, ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर का भी निर्माण, तो कैसे देखते हैं आपकी जिन एजेंडाज को लेके एक तरह से जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेते हैं, पार्टी ने कमिट किया अपने मैनिफेस्टो में और फिर उसको साथ में इम्प्लीमेंट किया, तो आगे पॉलिटिकल लैंडस्केप पे क्या है भारत सरकार के और एजेंडा गवर्नेंस में, और साथ ही साथ ऑब्वियसली क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो कैसे और किन मुद्दों पर आपको लगता है कि वो अपना फोकस रखेंगे?
प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि 2047 जब हमारे स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे तो भारत विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होगा, टेक्नोलॉजी में वो अग्रणी होगा, दुनिया को वो सब चीजें देगा जिसकी दुनिया को जरूरत है। और हमने कोविड के काल में भारत ने और भी संकट के समय में दुनिया में मदद पहुंचाकर ये साबित किया है। लेकिन मोदी सरकार के 10-11 साल के आप पूरे कार्यकाल को देखो, जितनी योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं, सबके हित की योजनाएं, बिना भेदभाव की योजनाएं, आप सिंपल केंद्र द्वारा राज्यों को जो अंशदान दिया जाता है केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार टैक्स में और खनिज रॉयल्टी में, उसको ही अगर आप देख ले तो उसमें भी विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा सत्तारूढ़ दल है जिन राज्यों में, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, ईमानदारी से और जिसको कमिटमेंट के साथ और एक प्रतिबद्धता के साथ ईमानदारी से शासन चलाना, शासन नहीं चलाना बल्कि कम से कम शासन चले और ज्यादा से ज्यादा सहभागिता और साथ मिलकर इस देश का लोक कल्याण करें, मोदी सरकार की सब योजनाओं के मूल में हम देखते हैं और वो हमने संसद में भी देखा। भले ही उन्होंने विपक्ष पर कड़े आक्रमण किए लेकिन आखिर में उनकी यही अपील होती थी कि हमको सबको मिलकर चलना चाहिए। जहां देश हित का सवाल आता है, आप जितनी भी योजनाएं मोदी सरकार चला रही है उनकी ठीक से मॉनिटरिंग है, उनमें बेनिफिशरीज को ठीक से और बेनिफिशरीज को ही पैसा मिलता है। 10 करोड़ जिस सरकार ने फेक बेनिफिशरीज 2-3 साल में हटा दिए, केंद्रीय योजनाओं का जो करोड़ों रुपया वो जिनकी जगहों में जा रहा था, ये कोई कम बड़ी बात है। हर टेक्नोलॉजी के आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, रेलवे के क्षेत्र में, राजमार्गों के क्षेत्र में और अंडर सी ब्रिज के क्षेत्र में, और जो अभी समुद्र पर जो सेतु बना है, पंबन ब्रिज बना है, वो तो टेक्नोलॉजी और उसका अद्भुत संगम है। जम्मू कश्मीर में जो ब्रिज बना है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है और इतना बड़ा, ये टेक्नोलॉजिकल कमाल और ये कमिटमेंट के साथ किए गए, डेडलाइन के साथ पूरे किए गए, डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट पूरे हुए। इससे पता लगता है कि मोदी सरकार जो बात बोलती है, जो उनके एजेंडे में है, जो उनके संकल्प पत्र में है, उसको वो पूरा करती है, अच्छी नीयत से पूरा करती है, ईमानदारी से पूरा करती है। करप्शन का एक मामला पिछले 11 साल में सामने नहीं आया है और
बिल्कुल
तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूँ कि जो देश के साथ वो कमिट कर रहे हैं उसको वो पूरा कर रहे हैं और आगे भी उनके जो योजनाएं हैं, कई योजनाओं का उल्लेख उन्होंने किया हुआ है, तो टेलीकॉम से लेकर तो सड़क तक, तो मैं समझता हूँ वो सब योजनाएं जैसे वो बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वैसे ही पूरी होंगी और लोगों को उसका लाभ मिलेगा।
बिल्कुल, चर्चा के अंत में अब हम आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा आप कि जिस तरह से हम देखते हैं कि सारा ये जो मुद्दा है ट्रांसपेरेंसी की बात है, आपने एक्ट्स कुछ सेक्शंस भी उसके हमें बहुत अच्छे से बताए, उसमें एक सेक्शन है जिसको मैं बड़ा करीब से देख रहा था कि ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की मैं सुन रहा था जो वक्तव्य थे, वक्तव्यों में वो कह रहे थे कि तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो बात आता है तो उसमें ये है कि पहले शायद व्यवस्था ये थी कि इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, क्या अब ये व्यवस्था है और ये कैसी व्यवस्था है?
इस तरह के विवाद पड़े हुए हैं, 10,000 से ज्यादा जो मामले हैं मुसलमानों के भी हैं और दूसरे धर्म के लोगों का भी है, और उसमें भी लिखा गया है कुरान में कि आप किसी के दूसरे की संपत्ति को नहीं ले सकते, वक्फ मतलब दान, वो भी किसके द्वारा, जो इस्लाम को मानता है। तो ये जो सारे उसमें जो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें समाप्त हो जाएगी, स्वामित्व को वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है सरकार के द्वारा संविधान के अनुसार जो तैनात अधिकारी है वो उसका फैसला करेगा, उसके बाद आप किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट उसका निर्णय करेगा। वो चीजें पहले नहीं थी, जो कि सबसे बड़ा वो एक कर्ज था वक्फ के लिए, देश के लिए, समाज के लिए।
बिल्कुल
जी,
चर्चा में सहभागिता के लिए आप दोनों का ही धन्यवाद।
जी धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख बिंदुओं पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और डॉ. कुमार राकेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।